When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, प्रस्तुत हैं रविवार 26 अक्टूबर 2025 के प्रमुख समाचार स्वाति शर्मा के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी आज मलेशिया पहुंचेंगे, जहां वे विश्व नेताओं की एशियान बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वे दक्षिण कोरिया में होने वाले ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी एपेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इन बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा केंद्रित रहेगी। बैठक से पहले अल्बनीजी ने संकेत दिया कि ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ हटाने के लिए चल रहे प्रयास जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी इन एशियाई बैठकों में शामिल होंगे, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी बढ़ती रुचि दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप से 3 घंटे लंबी बैठक की थी, जिसे उन्होंने फलदायक और गर्मजोशी भरा बताया था। आज सुबह वे उलुरू में थे, जहां उन्होंने इस प्रतिष्ठित स्थल, जिसे पहले आयर्स रॉक कहा जाता था, के पारंपरिक मालिकों को 40 वर्ष पहले सौंपे जाने की वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन के दक्षिण में हुए एक सड़क हादसे के बाद 3 वर्षीय बच्चे की मौत पुलिस स्टेशन में हो गई। शनिवार सुबह लगभग 5 बजे आपातकालीन सेवाओं को और म्यू के बर्नसाइड रोड पर दुर्घटना की सूचना मिली। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने 22 वर्षीय महिला और एक बच्चे, जो महिला के साथ वाहन में सवार था, की मदद की और उन्हें बीनले पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। पुलिस ने बयान में कहा कि थोड़ी देर बाद 3 वर्षीय बच्चा स्टेशन के फॉयर में बेहोश हो गया और अधिकारियों द्वारा CPR देने के प्रयासों के बावजूद बच्चे की मौत हो गई। डिटेक्टिव एक्टिंग सुपरिंटेंडेंट मार्क मूनी का कहना है कि उनका मानना है कि उन्हें लाने वाला 24 वर्षीय पुरुष ही वाहन चला रहा था और उस पर घरेलू हिंसा आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे कैनेडाई वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त 10% टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। यह कदम ओंटारियो प्रांत द्वारा प्रसारित एक एंटी टैरिफ टेलीविजन विज्ञापन के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति ने इस सप्ताह कैनेडा के साथ व्यापार वार्ता रोक दी, यह आरोप लगाते हुए कि देश ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को लेकर झूठ बोला है और एक विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की ऐतिहासिक टिप्पणियों का उपयोग किया है। आज शाम से कैनेडाई प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व नेता क्वालालंपुर में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए एकत्र होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी 5 दिवसीय एशियाई यात्रा पर हैं, जिसमें मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की यात्राएं शामिल हैं। इसराइल ने मध्य गाजा में हवाई हमले किए हैं, जो हमास के साथ अमेरिका प्रायोजित संघर्ष विराम का एक और उल्लंघन है। गाजा के अस्पतालों ने कम से कम 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला इस्लामिक जिहाद के एक संदिग्ध उग्रवादी को निशाना बनाकर किया गया था और उन्होंने अपने सैन्य अभियान को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब खबरें भारत से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले इसकी तैयारियों की जांच पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित है, लेकिन अब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इसमें कम से कम 1 महीना और लग सकता है, क्योंकि विभिन्न स्वीकृतियों की प्रक्रिया अभी जारी है। एक बार उद्घाटन होने के बाद 45 दिनों के भीतर प्रारंभिक उड़ान संचालन शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआती चरण में लगभग 10 भारतीय शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट को उत्तर भारत के सबसे बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं खेल जगत में भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को ऑस्ट्रेलिया पर 9 विकेट से जीत दिलाई। शर्मा ने 121 रन बनाए जबकि कोहली ने 74 रनों की पारी खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच जीतकर 3 मैचों की श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.